हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके।
ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे तो हमारी ये पूरी श्रृंखला ही समर्पित है हर उस आत्मा को जो स्वयं को पहचानने के लिए इस रास्ते पर चल रही है और जो व्यक्ति जो बीइंग्स इस पहचान से अभी भी वंचित हैं उन्हें भी हम यही आमंत्रण देना चाहेंगे कि आइए इस सफर पर हमारे साथ चलिए। खुद को पहचानने का परमात्मा के साथ एक रिश्ता बांधने का ये सफर बहुत सुंदर है। आपके ढेरों सवाल हम तक आए हैं और हर बार हम आपसे वादा करते थे आपसे आग्रह करते थे कि आप हमें सवाल पूछिए लिखिए और आज आपके सभी उन सवालों के साथ हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्योंकि हमें सानिध्य मिला है एक ऐसे सीनियर भाई साहब का जो सभी पूरे ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और साथ मिलकर आज आपके सवालों का जवाब हम उनके साथ तलाशेंगे। हमारे साथ हैं एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार भाई साहब ब्रजमोहन जी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रजमोहन भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
इतने सारे सवाल हैं और आज हमें अवसर मिला है कि हम आपसे बातचीत कर पाए तो आत्मा की बात की थी खुद को पहचानने की बात की तो एक ज्योत्सना जी का हमारे पास ईमेल आया है उन्हीं से शुरू करते हैं कि इफ सोल इज ऑलवेज प्योर अगर आत्मा पवित्र है वेरी एनर्जेटिक पावर हाउस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड देन वाई और वॉट इज द पर्पज ऑफ ऑल मेडिटेशन डिस्कोर्सेज और भजन्स because one day the impure body will go somewhere in soil. I mean to say by all these efforts are we trying to make ourselves pure which is already pure. मतलब ज्योत्सना जी आपका यही कहने का मतलब है उन सभी भाई बहनों को भी बता दें उनके सवाल के बारे में कि अगर आत्मा पवित्र है अगर आत्मा ऑलरेडी इतनी प्योर है इतनी एनर्जेटिक है तो फिर हमें सभी मेडिटेशन और भजन की क्या जरूरत है और जब शरीर का जो है उसको वो इम्प्योर है भी तो वो तो सॉइल में मिलेगा ही तो भाई साहब क्या जवाब देंगे।
ऐसा है इसमें खास क्लेरिफिकेशन चाहिए। उन्होंने इस बात से कि सोल कभी खत्म नहीं होती कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एटर्नल है इससे उन्होंने ये अर्थ निकाल लिया है कि सोल पावरफुल है इसीलिए तो खत्म नहीं होती और पावरफुल एनर्जेटिक है जिसका अंत ही नहीं हो सकता कितनी पावरफुल चीज है और साथ में उन्होंने कह दिया प्योर है। अब ये तो फैक्ट है कि सोल एटर्नल है आत्मा अनादि अविनाशी है लेकिन आत्मा स्टेजेस में आती है उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता इसमें कोई शक नहीं उसका ढांचा उसका जो एग्जिस्टेंस है एंटिटी है वो कायम रहती है लेकिन उसके विद इन दैट उसकी स्टेजेस हैं तो वो जो स्टेजेस हैं प्योर से शुरू होती है धीरे धीरे कम प्योर होती है इम्प्योरिटी होती है फिर बहुत इम्प्योर हो जाती है और इसीलिए आत्मा के साथ आप देखेंगे कि हम एडजेक्टिव लगाते हैं पुण्य आत्मा
महान आत्मा
पाप आत्मा देव आत्मा दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा तो ये एडजेक्टिव हम शरीर के साथ नहीं लगाते पुण्य शरीर पाप शरीर तो इससे क्या पता लगता है कि आत्मा ही प्योर और इम्प्योर होती है ये सत्य है कि शुरू में आत्मा की स्टेज प्योर होती है प्योर से ही इम्प्योर होना शुरू होती है प्योर से कंपैरेटिवली इम्प्योर होती है तो पहली बात तो ये है उन्होंने ये समझ लिया है कि आत्मा एटर्नल है और प्योर थी इसलिए एटर्नली इम्प्योर है ऐसा नहीं प्योर है ऐसा नहीं है। उनका सिंपल सवाल ये है कि ये जो हम भक्ति दान पुण्य पूजा आदि जो भी मेडिटेशन आदि करते हैं इसका कोई पर्पज नहीं अगर शरीर के साथ ही लगती हूँ, क्योंकि शरीर तो विनष्ट हो जाएगा, साथ ही ये चीजें खत्म हो जाएगी, आत्मा प्योर की प्योर रहेगी। तो उनको और बाकी जितने लोग इस बारे में जानना चाहते हैं उनको यही समझाना जरूरी है कि आत्मा ओरिजिनली प्योर थी, सदा प्योर नहीं रहती। और आज जब हम कहते हैं कि पाप की दुनिया हो गई है और दुख की दुनिया हो गई है, दुष्ट लोग हो गए हैं, तो ये दुष्ट शब्द आत्मा के लिए आता है क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा फंक्शन करती है। तो यहाँ यही डिस्टिंक्शन बताना है कि हम कहते हैं पतित पावन भगवान, तो पतित कौन बनता है? आत्मा पतित बनती है ना, उसको ही परमात्मा पावन करता, शरीर तो नष्ट हो जाएगा
भाई साहब। लेकिन यहाँ ये जो ये बात है कि आत्मा ही जो है, जो मैं हूँ, वही अब इतना जर्नी करते हुए पवित्र हो गया हूँ, या मैं पतित हो गई हूँ, या दुष्ट हो गई हूँ, या जो भी पवित्र नहीं रह गई हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि हम यही बात करते आ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझ में ही संभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बेसिक जो था वो प्योरिटी थी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ उनको कंफ्यूजन, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उनको क्यों कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि हम बात बार बार यही कर रहे हैं कि हमारे प्योरिटी जो है वो हमारा मूल संस्कार है। तो हमने बाकी संस्कारों को इतना ऊपर ओवर पावर कर लिया है, ओवर हो गया है कि वो संस्कार जो मूल संस्कार था वो दब गया है। आज एक बार फिर उसे रिवाइव करने की जरूरत है।
दब गया है या टोटली चेंज हो गया है,
लेकिन डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता।
नहीं, ऐसा है, मूल ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं प्योर ब्लड, और ब्लड में विकार आ जाए इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड में प्योर ब्लड नहीं होता, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप होता है, उसको फिर प्योरीफाई करना पड़ता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे नहीं कि प्योरिटी हमारी दब गई है, बल्कि प्योरिटी के अंदर ही इम्प्योरिटी का मिक्सचर
आ गई है।
हाँ जी, बाकी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन या बेटरमेंट आत्मा में होगी, क्योंकि शरीर तो एक बार जन्म ले लिया तो पुराना ही होता जाएगा, वो वापस बूढ़ा जवान तो नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा इम्प्योर से प्योर हो सकती। शरीर तो आखिर जाएगा, अपने अंत को पा जाएगा। इस लिहाज से ये ठीक है कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेटर कैन ओनली टेक प्लेस इन द सोल, नॉट इन द बॉडी, बिकॉज बॉडी एक बार डिके में आ गई तो जो थर्ड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके मुताबिक हर चीज डिसऑर्डर में बदलती है, वो वापस नहीं आएगी। वो तो मृत्यु के बाद ही वही आत्मा नया जन्म ले,
नया रूप, जब नया लिबास लेती
है तब उसको नया मिलेगा। इसलिए
तो लेकिन ज्योत्सना जी ये बात याद रखिए कि भाई साहब ने ये बात बोली है कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी वो आत्मा का ही रूप है, लेकिन अगर हम आज इम्प्योरिटी के एस्पेक्ट पर भी हैं तब भी एक होप बाकी है कि हम वो ट्रांसफॉर्मेशन और प्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, एंड दैट इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स। यहाँ जो मेडिटेशन की आपने बात की कि क्यों चाहिए फिर मेडिटेशन, अगर हम प्योर ही हैं तो हम खुद समझ रहे हैं कि हम प्योर नहीं हैं इस वक्त, लेकिन वो एहसास कि हम फिर प्योर हो सकते हैं, वो मेडिटेशन के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो कोई बहुत दूर नहीं है, प्रयास अगर हम करते हैं तो पहुंच सकते हैं। भाई साहब एक आगे और सवाल
है, एक बात और भी है कि किसी हर चीज की लिमिट होती है। ठीक है, हमने प्योरिटी से शुरू किया, इम्प्योरिटी होती गई होती गई होती गई, कहाँ तक होगी? कहा जाता है
वो सर्कल तो फिनिश होगा।
तो भगवान ने भी कहा है कि जब अति धर्म ग्लानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो मैं चेंज करता हूँ। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि साइक्लिक पैटर्न में, सारा यूनिवर्स साइक्लिक पैटर्न में चलता है, हर चीज नई होती है, पुरानी होती है, फिर न्यू होता है, ऑर्डर चेंजेस इंटू डिसऑर्डर, अगेन इट चेंजेस इंटू ऑर्डर। उस लिहाज से भी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए कि आत्मा इम्प्योर होगी तो और इम्प्योर ही होती जाएगी, देर इज ए लिमिट टू इट, और वो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम,
जहाँ अवेकनिंग हैपन्स, द मोमेंट अवेकनिंग हैपन्स, अवेयरनेस हैपन्स, द
ट्रांसफॉर्मेशन
का
प्रोसेस स्टार्ट्स,
एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड। यू नो, आपका सवाल आया और आप सबके सवाल मन में उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू हो गया है।
जब हम कहते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, अवेकनिंग मीन्स कि सोया हुआ है वो उसको जागृत कर रहे हैं, तो जागृति आएगी तो नेचुरली प्रोसेस शुरू होगा,
और वो प्रोसेस जो है वो मेडिटेशन से ही आ सकता है। एक और सवाल हम लेते हैं, जितेंद्र कलाल जी का है, डूंगरपुर राजस्थान से इन्होंने लिखा है। ये कह रहे हैं कि क्रोध पर काबू कैसे पाया जाए और मन को शांत, दिमाग को एकाग्र कैसे रखा जाए, इसको क्या करें?
ये तीन सवाल हैं, क्रोध पर काबू कैसे पाया जाए और मन को
शांत कैसे रखा जाए और दिमाग को एकाग्र।
अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, होना चाहिए मन को एकाग्र और दिमाग को शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि कहा जाता है दिमाग ठंडा होना चाहिए और मन में ही तूफान आते हैं, तो मन के संकल्पों को समेटना एकाग्रता है। खैर, उनका भाव यही है कि मन और दिमाग को ठीक कैसे रखा जाए। पहली बात क्रोध, क्रोध क्या पूछते हैं, क्रोध को कैसे खत्म किया जाए,
काबू कैसे किया।
ठीक है, क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है और आजकल तो क्रोध इतना कॉमन हो गया है कि लोगों ने इसको बीमारी समझ नहीं छोड़ दिया है। लेकिन हर एक व्यक्ति अनुभव करता है, जिसको भी क्रोध आता है, कि ये टेम्परेरी मैडनेस है। कहा जाता है क्रोध में आदमी आपा खो बैठता है।
भाई साहब, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि कल मुझे एक और बुजुर्ग भी मिले थे और अवेकनिंग देखते थे, वो प्रोग्राम देखते थे, एटलीस्ट लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि गुस्सा जो है वो एक प्रॉब्लम है। अभी तक बहुत बार ये होता था, वो खुद उन्होंने कहा कि मैं ये मानता था कि ये तो जायज है, ये तो नेचुरल है, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये समझने लग गया हूँ कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अब चेंज कैसे करना, उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने भी मुझसे कल पूछा था ये बात कि कैसे, आज ये सवाल भी आ गया।
ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अध्यात्म में भी काम क्रोध इनको बड़े विकार कहा गया, गीता में भी कहा गया है कामेषु क्रोधेषु, कि काम की पूर्ति न होने से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, आदमी के जजमेंट पावर ब्लर हो जाती है, जिससे फिर सर्वनाश हो जाता है, जहां तक कहा गया। तो ये बहुत बड़ी खराब चीज है, क्योंकि व्यक्ति का सारी लाइफ का आधार है उसकी जजमेंट पावर, कैसे वो सोचता है, किस बात में क्या फैसला करता है, और क्रोध उसी को अटैक कर देता है। उस वक्त उसकी जजमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको ठीक और गलत की पहचान नहीं रहती, और पहली निशानी यह है कि उसकी सारी बॉडी के ऊपर क्रोध का असर आता है। जब क्रोध आता है तो उसकी नर्व्स टेंस हो जाती हैं, व्यक्ति फील करता है मेरे में 5 व्यक्तियों जितनी ताकत है, जैसे पागल आदमी होता है ना, मैड पर्सन, उसको 6 आदमी पकड़ने के लिए चाहिए, उसको ऐसा महसूस होता है, और जैसे उसकी एनर्जी बहुत फास्ट स्पीड पे बर्न होती है, और मेडिकल साइंस भी कहती है कि ब्रेन सेल्स बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं,
डेड हो जाते हैं
और उसकी बर्न नहीं हो जाती। हाँ। उसके बाद निशानी ये है, क्रोध के बाद व्यक्ति एग्जॉस्टेड फील करता है इमीडिएटली, उस वक्त बड़ी ताकत महसूस करता है, उसके बाद टोटली एग्जॉस्टेड, फिर कहेगा पानी पिलाओ, रेस्ट करूं, उसको महसूस होता है। और क्रोध का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है रिपेंटेंस, कि हर व्यक्ति क्रोध के बाद पश्चाताप करता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया होता है क्रोध के पीरियड में वो नुकसान कारक होता है, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप क्रोध से बिगड़ जाते हैं। कहा जाता है, हमारे ज्ञान में कहते हैं कि क्रोध किसी पर करो तो उसका असर 6 महीने रहता है, यानी 6 महीने तक जिस व्यक्ति पर आपने क्रोध किया है वो नॉर्मल नहीं हो सकता आपके साथ। है, कहा जाता है ना, जुबान का तीर ज्यादा खतरनाक होता है, क्रोध जुबान से ही व्यक्त होता है, और ज्यादा आगे निकल जाओ तो वायलेंस पे भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रोध की व्यक्ति मुख के द्वारा होती है, अब शब्द बोले जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत डीपली हर्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है, रियलाइज करते हैं, क्रोध का पहला नुकसान है शांति खत्म, जहाँ क्रोध होगा अशांति होगी। कहा जाता है क्रोध वाले घर में मटके भी सूख जाते हैं, ऐसी कहावत भी है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्रोध, तो क्रोध का नुकसान है अशांति,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग इतना संस्कार आता है। मैं यहाँ पे भाई साहब आपसे शेयर भी करना चाहूंगी कि सब कुछ समझते हुए भी मुझे भी बहुत वक्त लगा क्रोध से बाहर निकलने में, क्योंकि इतना स्ट्रांग संस्कार है, इतना स्ट्रांगली आता है और आप उस वक्त सब भूल जाते हैं और आप रिएक्ट कर जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ
क्रोध के कई फॉर्म्स भी हैं। जितने सिविलाइज्ड सो कॉल्ड पर्सन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनको भी क्रोध आता है, लेकिन वो उसको छुपा के रखते हैं। मान लो यूनियन लीडर आ गया, कुछ बोला, उसको पता है कि रॉन्ग बोल रहा है, लेकिन वो सारा कुछ देखते हुए व्यक्त नहीं करता, अंदर सोचता है इससे कैसे बदला लूं, ऊपर से स्माइल करता रहता है। इसी प्रकार से एक क्रोध का ऐसा भी रूप होता है कि ऊपर से आप जाहिर करेंगे मुझे क्रोध नहीं है, अंदर आपके अंदर बहुत जबरदस्त तरह की गांठ बंधेगी और वो आपको तंग करे,
जैसे होना भी।
इम्प्लोसिव एंगर एक होता है, एक्सप्लोसिव एंगर, एक्सप्रेस कर दिया वो फिर भी खत्म हो जाता है, इम्प्लोसिव एंगर करने वाले को तंग करता है। और क्रोध का दूसरा बात यह है कि पहले व्यक्ति खुद जलता है फिर दूसरे को जलाता है। क्रोध का नुकसान पहले अपने को होता है। हम समझते हैं मैंने गुस्सा किया उसको मैंने शेक कर दिया, लेकिन पहले कौन जला? मैं अपने आप को 100 डिग्री तक हीट अप करूंगा तो 80 डिग्री उसको पास ऑन करूंगा तो मैं जला। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्रोध को इतनी जल्दी से नहीं जीता जा सकता। पहले उसको मोटे रूप से जीता जाता है। ध्यान पहले तो है, कॉन्शियसनेस हो, क्रोध को नुकसानकारक चीज है, फिर उसको जीतने के उपाय किए जाते हैं। तो पहला ये है कि क्रोध को जीतने के लिए एक थोड़ा सा मार्जिन होता है रिएक्शन का, कि अगर आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया तो आप नहीं जीत सकते। देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन व्हाट इज कमिंग टू यू एंड व्हाट यू आर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, देयर कैन बी सिचुएशंस कि जिसमें आपको नेचुरली क्रोध आए क्योंकि दूसरा व्यक्ति कोई बात ही ऐसी कर रहा है जो आपको क्रोधित करे। अब सवाल ये कि उस पीरियड में आपने ये देखना है कि मैंने जैसे को तैसा करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, या करने वाला जो कर रहा है वो अपने ढंग से कर रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने ढंग से करना है। तो उस स्पेस के अंदर वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली वो स्पेस बहुत कॉन्शियस रहे व्यक्ति तो आता है। दूसरी बात, बहुत समय से हम क्रोध करते आए हैं, क्रोध हैज बीन टेकन एज नॉर्म ऑफ लाइफ। इस वजह से भी हम समझते हैं कि उसको भी ये तो कॉमन था, हमारी नेचर बन गई है, इसलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते। अब सवाल जो इसको ठीक तो करना है, कैसे किया जाए? तो क्रोध का सबसे आसान एंटीडोट है वो क्या है? वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, एफर्ट लगती है, प्रैक्टिस लगती है, ध्यान रखना पड़ता है। पहली सवाल ये, परमात्मा को क्रोध आता है? आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? परमात्मा भी तो गलतियां देखता है, तो वो जब गलती देखता है तो वो क्या करता है? तो परमात्मा को कहा जाता है गॉड इज मर्सीफुल, कि परमात्मा क्षमा करने वाला है। तो हम भी अगर नॉर्मली क्रोध इसीलिए आता है कि किसी ने गलती कर दी, जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, अब हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए, रॉन्ग कर रहा है हमारे हिसाब से। एक तो ये, कई लोग ऐसे होते हैं वो समझते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड शुड हैपन एज आई वांट इट, अब वो नहीं होता तो उनको क्रोध आ जाता बिकॉज देयर ओन डिजायर्स आर नॉट कैरिड आउट। इन एनी केस, अगर उस समय व्यक्ति क्रोध की बजाय मर्सी कर ले, जैसे एक दादा अपने ग्रैंडसन पर मर्सी कर लेता है, ग्रैंडसन नया क्रॉकरी तोड़ देता है, अब दादा को पता है तोड़ दी है लेकिन सोचता है बच्चा है छोड़ दो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अपने आप को एंसेस्टर या पूर्वज या बड़ा समझ के और उसको क्षमा कर दें, उसकी बराबरी में ना आए कि उसने क्रोध किया मैं उससे ज्यादा करके ओवर पावर करूं, तो बच सकते हैं। तो क्रोध के लिए मन में रखा जाए मर्सी, कि आया किसी ने कुछ किया, मर्सी ऑन हिम। तो वी आर नॉट डूइंग मर्सी ऑन हिम,
डूइंग मर्सी ऑन
आवर सेल्फ।
एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने अंदर कि ये सबसे ज्यादा हार्म हमें कर रहा है,
हमें कर
तो रहा हमें सेल्फिश होकर ये याद रखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को बचाना है, टू सेव आवर सेल्फ।
और इससे आपके रिलेशन बेटर होंगे, दूसरा भी एक्सपेक्ट करता होगा कि ये क्रोध करेगा, और जब आप नहीं करेंगे उसके अंदर, चाहे वो बोले ना, उसके अंदर एक भावना पैदा होगी कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया।
जितेंद्र जी, तो चलिए ट्राई करते हैं और दूसरे को अचंभित करने का एक आपको मौका मिलता है कि जहां आपसे उम्मीद ये की जा रही होगी कि आप गुस्सा करेंगे और आप गुस्सा नहीं करें, तो वो रिएक्शन जो है वो अमेजिंग हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अचंभित रह जाएंगे। और एक और बात भाई साहब, ये भी आती है कि जहां हम अवेयर हो गए, अगर हम अवेकेंड हैं या हमें अब ये समझ में आ रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि दूसरे वाले को तो पता नहीं है, तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। दैट्स हाउ आई डेल्ट विद इट, कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई हैव बिकम अवेयर।
मैं आपको एक इसका क्रोध को जीतने का एक बहुत बड़ा फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर लोगों को किसी चीज में फायदा दिखाई दे, ये तो नुकसान की साइड है, नुकसान बच गया, ओके। फायदा क्या होता है, ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। आप देखेंगे जिंदगी में कई लोग हैं, दे आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक, वो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, वो इतना एक्टिव रहते हैं, कभी थकते नहीं, हर वक्त एक एक्टिविटी दूसरी, उनमें ना लेजीनेस है ना कभी आलस है। वजह क्या है? क्रोध को अगर आप, क्रोध कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, अगर प्रजर्वेशन ऑफ दैट एनर्जी हो जाए तो सोल के अंदर उमंग और उत्साह की शक्ति आ जाती है। समझा आपने? उमंग और उत्साह सोल में आता है तो बॉडी को उसी तरह चलाती है। तो जैसे हमारी एक दादी है 93 इयर्स की है, आप देखेंगे कि आम यंग पर्सन से ज्यादा काम करती है, और ये नहीं कि अननेचुरली करती, नेचुरली करती है, एंड शी इज ऑलवेज रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। व्हाई? बिकॉज शी हैज ओवरकम एंगर। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है मुझे जिंदगी में थकावट ना आए और मैं सदा उमंग उत्साह में रहूं, हर वक्त फुल ऑफ एनर्जी रहूं, तो वो एनर्जी सोल में जील एंड एंथुजियाज्म के रूप में क्रोध को जीतने से आता
है। बिल्कुल, और वो एफर्टलेस हो जाती है। हाँ। वो एफर्टलेसली आपके पास आती है, तो ये एक हमें जो है एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो जिंदगी में आज हमें तय करना है कि हमने गुस्सा करके थकान भरी जिंदगी जीनी है या गुस्से को छोड़कर एक एंथुजियास्टिक जिंदगी जो कि एफर्टलेस हो जाएगी, जिसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगेन, हर बार की तरह बॉल इज इन आवर कोर्ट।
एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है, जो सूखी लकड़ी होती है वो फटाफट आग पकड़ लेती है, और हरी लकड़ी तो नहीं पकड़ती। आप समुन्दर को आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हरा भरा है, फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है, उसका लाइफ के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड है, हर तरह से कंटेंटेड है, उसको क्रोध नहीं आता, बहुत मुश्किल से आएगा। और जो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड है, हर वक्त डिसकंटेंटेड है, हर वक्त नेगेटिव ही सोचता रहता है, वो सोचता है सारी दुनिया शायद उसकी उसको तंग करने के लिए बनी है, उसको किसी चीज में कुछ दिखता ही नहीं, वो फटाफट क्रोधित हो जाता है। आप ही देखिए, आप अच्छे मूड में हो, कोई आपसे टकरा जाए, कह सॉरी, आप कहें कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर इन गुड मूड। और अगर आप बिल्कुल खराब मूड में है, किसी ने आपको तंग किया और कोई टकरा जाए, तो आप क्या कहेंगे?
सारा गुस्सा होने
उस पर निकालेंगे, दिखता नहीं, दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा इंसान है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड।
सर, डेफिनेटली अगर बार बार गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चेक करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में खुश हैं या नहीं, क्योंकि यही पॉज लेकर चेक करेंगे अगर तो शायद अपने, क्योंकि आज हम उस प्रोसेस में हैं जहां खुद को हर पड़ाव पर हम तलाश रहे हैं, खुद से बात करने की, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल, वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सवाल मैं जरूर लेना चाहती हूँ। रुपिंदर कौर जी ने पंजाब से लिखा है कि आई वॉन्ट टू आस्क, वीपिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईगो, यू सेट मीन्स इट इज आर ईगो विच गॉट हर्ट एंड वी वीप, बट देर आर सम सच सिचुएशन एट आर होम दैट आई वॉज वेरी अपसेट विद। आई ट्राई टू बी हैप्पी बट कुड नॉट। एक्चुअली आई एम मैरिड एंड आई एंड माई फादर इन लॉ लिव एट होम, my husband is abroad, so my father-in-law is very strict. He always became very angry on me without any solid reason. Yesterday I told my father-in-law that I am not happy in this house and I began to cry. I tried myself to stop crying but was very upset, so I could not stop. And after seeing me crying, my father-in-law really realized that he is hurting me and he became normal. He began to deal in a nice way with me. So I want to ask that is weeping necessary at some places where we cannot stop ourselves? क्या हमें रो लेना चाहिए? अगर बहुत रोना आ रहा हो तो क्या रो लेना ठीक रहता है? और जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मेरी समस्या सॉल्व हो गई जब मैंने रोई। तो
हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतनी पावरफुल सोल बने, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चलो इस बार इन्होंने रो लिया, हो सकता है पहली बार रोया हो तो उन्होंने एटीट्यूड चेंज कर लिया, लेट अस टेक इट लाइक दैट। ये पता नहीं कि इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखने से पहले रोया या बाद में
रोई ना।
अच्छा, तो अब रोया, अब मान लीजिए ये बार बार वही ट्राई करेंगी तो एक दिन आएगा इनका रोना भी वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इन्होंने एफर्ट किया कि रो लिया। लेकिन इससे बेहतर ये है कि बिना रोए ही अगर ये कहते कि भाई ये आप जो मेरे साथ कर रहे हैं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इट्स एट्रोसिटी, और उनकी समझ में आ जाता, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हमें एक यूज किया हमने रोना एक बार, इट डजंट मीन कि इट इज ए टूल टू बी यूज इन एवरी सिचुएशन।
और जहां हर्ट होने की बात, जहां ईगो होने की बात थी रुपिंदर जी, तो कहीं ना कहीं हर्ट आप तभी हो रही थी क्योंकि आप उस रुपिंदर के कैरेक्टर में हैं। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये तो है, और अगर आप उनसे बिना हर्ट हुए अगर एक बार समझाने की कोशिश करें। होता यह है भाई साहब कि हम इतने हर्ट होते हैं, तो हम जब किसी को समझा रहे होते हैं, हम ऑलरेडी नाराज होते हैं जब उसे समझा रहे होते हैं, तो उन तक वो नाराजगी पहले पहुंचती है, तो वो इसलिए हमारी बात भी नहीं समझते। अगर हम बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पर उन्हें समझाएंगे कि ये है समस्या, ये है, और तब शायद वो ज्यादा।
बात यह है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती,
इट टेक्स टाइम,
ये धीरे धीरे बिल्ट अप हुआ हुआ डिससेटिस्फेक्शन है। अब जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है तो इन्होंने रोकर उसको प्रकट किया है। अगर उसको कहा जाता निप द इवल इन द बड, अगर ये शुरू में ही जब इस प्रकार का व्यवहार होना शुरू हुआ था उस वक्त ही अपनी शक्ति का प्रयोग करके बहुत सॉफ्ट शब्दों में बड़े हार्मोनियस एटमोस्फियर में ये बात करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अब तो एक्सट्रीम पर हुआ है, इसलिए इनको रोने को टूल नहीं मानना चाहिए, इसको एक जस्टिफिकेशन फॉर देयर हर विक्ट्री नहीं गिनना चाहिए। हो सकता है अगर ऐसा मानेंगी तो आगे फेलियर भी हो सकता है।
बिल्कुल, तो ये आप याद रखिए रुपेंद्र जी की, और चेक करिए कि आपका रोना जो था वो ठीक है, आप रो ली, काम हो गया, लेकिन वो उतना जायज नहीं है जब हम सोल कॉन्शियसनेस में है। तो भाई साहब आज बहुत बड़ा काम हुआ, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं लोगों के और हमसे इतनी शिकायत भी थी, तो आज उस शिकायत को हमने दूर किया है। अपने सभी जो हमारा पूरा परिवार बन गया है इस तरह से, आप हमारे साथ शामिल हुए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
अपने सभी दर्शकों से भी यही करेंगे, इस परिवार का हिस्सा है आप, हर बार की तरह हम आपसे आग्रह करते हैं। और देखिए आज हमने वायदा पूरा किया और आपके वो सवाल लेकर आए, आगे आने वाली कड़ी में भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर कोई बात ऐसी है जो अभी भी आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह वही निमंत्रण है आपको, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
अब एक थिंग, ड्रामा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी, आने वाली कड़ी में भी बात यही करेंगे, जो आपके सवाल हम तक आए हैं उनके जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। प्रकाश आपने,
हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने,
पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने,
पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने,
आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया, हो हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। कल्प किया अनोखे राजयोग ने,
हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने,
हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने,
हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने,
आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल।